एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में एराही, तू कभी भी अकेला नहीं।
उसका साया सदा तेरे
जाना ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं। बात ये भूल न जाना ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे कि हम तेरे वचनों को समझ सके। पिता परमेश्वर, मैं श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, तो उनके संग हो कि वे तेरे वचनों को समझने सके और तेरे राह में चलने सके। पिता मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है प्रभु का दाख बारी भाग एक। दो बेटों के दृष्टांत के बाद दाख की बारी का दृष्टांत आया। एक में मसीह ने यहूदी शिक्षकों के सामने आज्ञाकारिता के महत्व को रखा था, दूसरे में उन्होंने इज़राइल को दिए गए समृद्ध आशीर्वादों की ओर इशारा किया और इनमें उनकी आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर के दावे को दिखाया। उन्होंने उनके सामने परमेश्वर के उद्देश्य की महिमा को रखा जिसे आज्ञाकारिता के माध्यम से वे पूरा कर सकते थे। भविष्य पर्दा हटाते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफलता के कारण पूरा राष्ट्र उनके आशीर्वाद को खो रहा था और खुद का विनाश ला रहा था। प्यारो, मसीह ने कहा एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रस का कुंड खोदा, एक गुम्मट बनाया, उसका ठेका किसानों को दिया और दूर देश चला गया। इस दाग की बारी का वर्णन भविष्यवक्ता यशायाह ने किया है। अब मैं अपने प्रियतम के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। मेरे प्रियतम के पास एक है, उसने एक बहुत उपजाऊ पहाड़ पर एक दाख की बारी लगाई और उसने उसे घेर लिया और उसके पत्थर चुनकर उसमें उत्तम उत्तम दाखलता लगाई और उसके बीच में एक गुम्मट बनाया और उसमें एक दाखरस का कुंड भी बनाया और उसने आशा की कि उसमें दाख पैदा हो। यशायाह 5:1-2। किसान जंगल से जमीन का एक टुकड़ा चुनता है, वह उसे बाड़ लगाता है, साफ करता है, जोतता है और उसमें बढ़िया बेले लगाता है जिससे उसे अच्छी फसल की उम्मीद होती है। यह जमीन का टुकड़ा बंजर जमीन से बेहतर है। वह उम्मीद करता है कि वह अपनी देखभाल और खेती में किए गए परिश्रम के नतीजे दिखाकर उसे सम्मान देगा। इसलिए परमेश्वर ने मसीह द्वारा प्रशिक्षित और शिक्षित होने के लिए दुनिया से लोगों को चुना था। भविष्यवक्ता कहता है, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घराना है और यहूदा के लोग उसके मनभावना पौधे हैं। यशायाह 5:7। इस लोगों पर परमेश्वर ने महान विशेष अधिकार दिए थे, उन्हें अपनी प्रचुर भलाई से भरपूर आशीर्वाद दिया था। उसने उनसे फल देकर उसका सम्मान करने की उपेक्षा की, उन्हें उसके राज्य के सिद्धांतों को प्रकट करना था। एक पतित दुष्ट दुनिया के बीच में उन्हें परमेश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करना था। प्रभु की दाख की बारी के रूप में उन्हें मूर्ति पूजक राष्ट्रों के फलों से बिल्कुल अलग फल पैदा करने थे। इन मूर्ति पूजक लोगों ने खुद को दुष्टता के काम में झोंक दिया था। हिंसा और अपराध, लालच, उत्पीड़न और सबसे भ्रष्ट व्यवहार बिना किसी रोक टोक के किए गए थे। अधर्म, पतन और दुख भ्रष्ट वृक्ष के फल थे। ईश्वर द्वारा लगाए गए बेल पर लगने वाले फल इसके बिल्कुल विपरीत होने चाहिए थे। यहूदी राष्ट्र का यह विशेष अधिकार था कि वह परमेश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करे, जैसा कि मूसा को बताया गया था। भविष्यवक्ता मूसा की प्रार्थना के उत्तर में, मुझे अपनी महिमा दिखाओ, प्रभु ने वादा किया, मैं अपनी सारी भलाई तुम्हारे सामने से गुजरने दूंगा, निर्गमन 33:18-19 में हम पाते हैं। और प्रभु उसके सामने से गुजरा और घोषणा की, प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाले, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाले, यह हम पाते हैं निर्गमन 34:6-7 में। यही वह फल था जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता था। अपने चरित्र की शुद्धता में, अपने जीवन की पवित्रता में, अपनी दया और प्रेममय कृपा और करुणा में उन्हें यह दिखाना था कि प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, प्राण को परिवर्तित कर देती है। भजन संहिता 19:7 के अनुसार यहूदी राष्ट्र के माध्यम से सभी लोगों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करना परमेश्वर का उद्देश्य था। इज़राइल के माध्यम से पूरे विश्व में उसके प्रकाश के प्रसार के लिए मार्ग तैयार किया जाना था। दुनिया के राष्ट्रों ने भ्रष्ट आचरण का अनुसरण करके परमेश्वर के ज्ञान को खो दिया था। फिर भी अपनी दया में परमेश्वर ने उन्हें अस्तित्व से मिटाया नहीं, उसने उन्हें अपने कलीसिया के माध्यम से अपने साथ परिचित होने का अवसर देने का उद्देश्य बनाया। उसने योजना बनाई कि उसके लोगों के माध्यम से प्रकट किए गए सिद्धांत मनुष्य में परमेश्वर की नैतिक छवि को बहाल करने का साधन होने चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को उसके मूर्ति पूजक कुटुंब से बाहर बुलाया और उसे कनान देश में रहने के लिए कहा। उसने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12:2 में, यह प्रतिज्ञा वहां लिखा गया है। अब्राहम के वंशज याकूब और उसके वंशज मिस्र में लाए गए ताकि उस महान और दुष्ट राष्ट्र के बीच में वे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को प्रकट कर सके। यूसुफ की ईमानदारी और पूरे मिस्र के लोगों के जीवन को बचाने में उनके अद्भुत कार्य मसीह के जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। भविष्यवक्ता मूसा और कई अन्य लोग परमेश्वर के लिए गवाह थे। इज़राइल को मिस्र से बाहर लाने में प्रभु ने फिर से अपनी शक्ति और अपनी दया प्रकट की। दास्ता से उनके उद्धार में उनके अद्भुत कार्य और जंगल में उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ उनके व्यवहार अद्वितीय थे, सिर्फ उनके लाभ के लिए। ये आसपास के देशों के लिए एक सबक के रूप में थे। प्रभु ने खुद को सभी मानवीय अधिकार और मानवता से ऊपर एक परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। अपने लोगों की खातिर उन्होंने जो चिन्ह और चमत्कार किए, उनसे प्रकृति पर उनकी शक्ति और प्रकृति की पूजा करने वालों में सबसे महान पर उनका प्रभाव दिखा। परमेश्वर मिस्र की घमंडी भूमि से होकर गया, जैसे वह अंतिम दिनों में पृथ्वी से होकर जाएगा। आग और तूफान, भूकंप और मृत्यु के साथ वह महान मैं हूं ने अपने लोगों को छुड़ाया। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उसने उन्हें बंधन की भूमि से बाहर निकाला। उसने उन्हें बड़े और भयानक जंगल में ले गया, जिसमें तेज विष वाले सांप और बिच्छू और सूखा था। यह हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8:15 में। उसने उनके लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और उन्हें आकाश के अन्न से खिलाया। भजन संहिता 68:24 में हम यह पढ़ते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा, यहोवा का भाग उसकी प्रजा है। उसने उसे चारों ओर ले गया, उसने उसे निर्देश दिया, उसने उसे अपनी आंखों की पुतली की तरह रखा। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, अपने बच्चों को ऊपर फड़फड़ाने के लिए फेंकता है, अपने पंख फैलाता है, उन्हें उठाता है, अपने पंखों पर उठाता है, वैसे ही यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता था और उसके साथ कोई दूसरा देवता नहीं था। व्यवस्था विवरण 32:9-12। इस प्रकार उसने उन्हें अपने पास ले आया ताकि वे परम प्रधान की छाया में निवास कर सके। परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लाया। मरुभूमि में परमेश्वर मूसा से मिला और अपना नाम मैं हूं के रूप में उसे बतलाया। परमेश्वर इज़राइल के बच्चों के जंगल में भटकने के दौरान उनके नेता थे। दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे में लिपटे हुए उन्होंने उनका नेतृत्व किया और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें जंगल के खतरों से बचाया। वे उन्हें वादे के देश में ले आए और उन सभी राष्ट्रों की दृष्टि में जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इज़राइल को अपने चुने हुए अधिकार प्रभु की दाख की बारी के रूप में स्थापित किया। प्यारो, इस लोगों को परमेश्वर के वचन समर्पित थे। वे उसके कानून के उपदेशों, सत्य, न्याय और पवित्रता के शाश्वत सिद्धांतों से घिरे हुए थे। इन सिद्धांतों का पालन करना उनकी सुरक्षा थी, क्योंकि यह उन्हें पापों कार्यों द्वारा स्वयं को नष्ट करने से बचाता और दाख की बारी में मीनार के समान परमेश्वर ने देश के बीच में अपना पवित्र मंदिर स्थापित किया। मसीह उनके शिक्षक थे। जैसे वे जंगल में उनके साथ थे, वैसे ही उन्हें अभी भी उनका शिक्षक और मार्गदर्शक बनना था। तंबू और मंदिर में उनकी महिमा दया के आसन के ऊपर पवित्र सकीना में निवास करती थी। उनके लिए उन्होंने लगातार अपने प्रेम और धैर्य की स्मृति को प्रकट किया। भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों इज़राइल को प्रशंसा और महिमा का पात्र बनाना चाहता था। उन्हें हर आध्यात्मिक लाभ दिया गया। परमेश्वर ने उनसे चरित्र निर्माण के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं रोका जो उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाता। परमेश्वर के नियमों का पालन करने से वे दुनिया के राष्ट्रों के सामने स्मृति के चमत्कार बनते, जो उन्हें सभी चालाक कामों में बुद्धि और कौशल दे सकता है। वह उनका शिक्षक बना रहेगा और अपने नियमों का पालन करके उन्हें महान और उन्नत बनाएगा। यदि वे आज्ञाकारी होंगे तो वे अन्य राष्ट्रों को पीड़ित करने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे और उन्हें बुद्धि की शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर की महिमा, उनकी महिमा और शक्ति उनकी सभी समृद्धि में प्रकट होनी थी। उन्हें पुजारियों और राजकुमारों का एक राज्य होना था। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र बनने के लिए हर सुविधा प्रदान की। मसीह ने भविष्यवक्ता मूसा के माध्यम से सबसे निश्चित तरीके से उनके सामने परमेश्वर के उद्देश्य को रखा था और उनकी स्मृति की शर्तों को स्पष्ट किया था। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र लोग हो, उसने कहा। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें पृथ्वी भर के सभी लोगों में से अपने लिए एक विशेष लोग होने के लिए चुना है। इसलिए जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञाओं को मानने वालों के साथ हजार पीढ़ियों तक वाचा और दया रखता है। इसलिए तुम आज्ञाओं का पालन करो और जो विधियां और नियम मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनके अनुसार चलना। इसलिए यदि तू इन नियमों को माने और उन पर चले तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ अपनी वाचा पूरी करेगा और उस करुणा को जो उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर की थी पूरा करेगा और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और तुझे बढ़ाएगा और वह तेरे गर्व के फल और तेरी भूमि की उपज अर्थात तेरा अन्न और दाखमधु और टटका तेल और तेरी गायों और भेड़ बकरियों की बढ़ती को आशीष देगा उस देश में जिसे देने की शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी। तो सब लोगों से अधिक धन्य होगा और यहोवा तुझसे सब रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है तुझ पर ना भेजेगा। यह प्रतिज्ञा भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा इसराइली जाति को दी गई थी। यह रिकॉर्ड है व्यवस्था विवरण 7:6 और 9 और 11-15 में। यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते तो परमेश्वर ने उन्हें उत्तम से उत्तम गेहूं देने और चट्टान से मधु निकलने का वचन दिया था। वह उन्हें दीर्घायु से संतुष्ट करने और उन्हें अपना उद्धार दिखाने वाला था। परमेश्वर की अवज्ञा के कारण आदम और हवा ने अदन को खो दिया था। वे परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए थे जिसके कारण आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था और पाप के कारण पूरी पृथ्वी शापित हो गई थी। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग उसके निर्देशों का पालन करते तो उनकी भूमि उपजाऊ और सुंदर हो जाती। परमेश्वर ने स्वयं उन्हें मिट्टी की खेती के संबंध में निर्देश दिए थे और उन्हें इसकी बहाली में उसके साथ सहयोग करना था। इस प्रकार परमेश्वर के नियंत्रण में पूरी भूमि आध्यात्मिक सत्य का एक वस्तु पाठ बन जाती। जैसे उसके प्राकृतिक नियमों का पालन करने पर पृथ्वी को अपने खजाने का उत्पादन करना चाहिए, वैसे ही उसके नैतिक नियमों का पालन करने पर लोगों के दिलों को उसके चरित्र के गुणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यहाँ तक कि बुतपरस्त भी उन लोगों की श्रेष्ठता को पहचानेंगे जो जीवित परमेश्वर की सेवा और उपासना करते हैं। प्यारो, हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर ने इसराइली लोगों को बुलाया, उन्हें चुना और उन्हें खास बनाने का प्रतिज्ञा किया, उन्हें अपना व्यवस्था दिया और उन्हें प्रतिज्ञा दिया था कि यदि वे उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके ऊपर भरोसा विश्वास करके चलेंगे तो वह उन्हें दुनिया के राष्ट्रों के सबसे ऊपर स्थान पर रखेगा। परमेश्वर आश्वासन दिया था कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, वह उनके साथ रहेगा, वह उनका अगुवाई करेगा। दिन को जैसा हुआ बादल का खंभा में इसराइली लोगों को मरुभूमि में अगुवाई कर रहा था और रात को आग का खंभा में उनका अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर निरंतर उनके प्रतिज्ञा के देश में भी उनका अगुआ ठहरने वाला था। केवल उन्हें उस पर भरोसा करना था, उसके पीछे चलना था, उसकी आज्ञाओं को मानना था, तब वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में होते। परमेश्वर जिस तरह अब्राहम को बुलाया था और कहा था कि उन्हें वह आशीष देगा और उसके लोगों को बहुत महान बनाएगा, परमेश्वर अपना वादा पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर था, तैयार था, पर ये यहूदी लोग परमेश्वर के प्रति हमेशा के लिए विश्वास नहीं रह पाए, जिससे वह उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए उद्देश्य रखा था। प्यारो, आज आपके और हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन है, उसका व्यवस्था है, और परमेश्वर कहता है मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आओ, और यदि हम उसकी व्यवस्था को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके राह में चलते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा और धार्मिकता के राह में हमें बढ़ाएगा और हमें अपने आने वाले राज के लिए तैयार करेगा। प्यारो, क्या आप उस राज में होना चाहते हैं जो सुख समृद्धि से भरा हुआ है, जहाँ शांति है और जहाँ लोग कभी नहीं मरेंगे? प्यारो, परमेश्वर आपको आज बुला रहा है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, उसके पीछे चले, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर कहता है वह हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए मदद करेगा, वह अपना आत्मा हमें देगा कि हम उसकी आज्ञाओं को मानने में प्रसन्न रहें। हम अपने शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का शक्ति से और पवित्र आत्मा का शक्ति से उसके पीछे चल सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। प्यारो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने के लिए इच्छुक होंगे और उसके रास्ता में चलना चाहेंगे, ताकि आप परमेश्वर का बहुतायत से आशीष पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं, हम सबको तो आशीष दे पिता, हमें ग्रहण कर, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं पिता, क्योंकि तूने प्रतिज्ञा किया है जो तेरी आज्ञाओं को मानेगा, तेरे पीछे चलेगा, तेरे ऊपर विश्वास करेगा, तू उन्हें बड़ा बनाएगा, उन्हें आशीष देगा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें स्वर्ग राज ले जाएगा। प्रभु परमेश्वर ऐसा आशीष हमारे जीवन में दुआ हो सके। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जाकर के सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं, hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।